सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक प्रतिक्रिया पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल और रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
सुर्खियों में कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों की निर्मम हत्या के ठीक दो सप्ताह बाद 6 मई और 7 मई के बीच की रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच भारत के सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों पर जवाबी हमला किया। पिछली रात पाकिस्तान ने 15 सैन्य ठिकानों पर भारत में हमले का प्रयास किया। इस उभरते घटनाक्रम पर आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
A few things that I would like you to keep in mind. First of all, there is mention on all sides of escalation. I think the first point that you have to keep in mind is the attack of 22nd April in Pahalgam is the original escalation. ये जो सिलसिला है हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है। Escalation वहां पे हुआ है।
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी जी हैं। उमेश जी, ये जो उन्होंने बात कही विदेश सचिव ने कि एस्केलेशन शुरू कहां से हुआ और जिसके जवाब में हमने परसों रात कदम उठाया, ये कितना जरूरी है समझना, और ये भी समझना कि हमने जो कदम उठाया वो सैन्य ठिकानों पर या सिविलियन ठिकानों पर नहीं था, वो सीधे सिर्फ आतंकवाद पर एक हमला था। और कल जो हमला हुआ है पाकिस्तान द्वारा, कैसे आप देखते हैं इस सिचुएशन को?
देखिए,
या हमले का प्रयास हुआ है पाकिस्तान
द्वारा? देखिए, पहले तो मैं ये फिर से दोहरा दूं कि भारत ने कोई हमला नहीं किया, भारत ने प्रतिक्रिया स्वरूप कार्रवाई की है। ये एक्शन है इंडिया का आतंक के खिलाफ, और भारत ने इस कार्रवाई के जरिए एक संदेश दिया है। अब भारत, अब देखिए कि अकेले अगर कश्मीरी इलाकों में जो आतंकवाद हो रहा है और जो पाकिस्तान से जो निर्यात वाला आतंक है, खासतौर पर 1990 से जो शुरू हुआ है कश्मीर और उसके एडजॉइनिंग एरिया के चलते, या उसके संदर्भ में जैसे मुंबई हमला है या पठानकोट है या जैसे भी है, तो 3 दशकों से भारत जो है आतंकवाद से प्रताड़ित है, बहुत पीड़ित है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत सारे बेगुनाह खून बह चुके हैं। भारत अभी तक दुनिया के सामने एक जाता रहा उसका संदेश कि वो सॉफ्ट स्टेट है। इस एक्शन के जरिए, जो पहलगाम एक्शन है, इस एक्शन के जरिए भारत ने ये दिखाने की कोशिश की है, पूरी दुनिया को संदेश दिया, और पाकिस्तान को तो सबसे बड़ा संदेश है, पाकिस्तान की सेना को सबसे बड़ा संदेश है, पाकिस्तान की आई को बहुत बड़ा संदेश है कि भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा, उसकी प्रतिबद्धता आतंक को खत्म करना है, और आतंक को खत्म करने के लिए जहां जरूरत होगी, जैसे जरूरत होगी, वहीं वो घुस करके आतंकवादियों का खात्मा करेगा, भारत की सेना, भारत की सरकार। और दूसरी बात जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, वो पाकिस्तान के उस रोना का जवाब है, जो पाकिस्तान पहलगाम के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यह सिविलियन अटैक है या मिलिट्री अटैक है, उस रोना का जवाब आज विक्रम मिश्री ने दिया, भारत के विदेश सचिव हैं, और आज भी कल की तरह भारत की दो सैन्य अधिकारी सफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने भी पूरे नपे तुले शब्दों में फिर से बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ आतंक के खिलाफ कार्रवाई थी, किसी सैनिक ठिकाने पर हमला नहीं था, किसी सैनिक इलाके पर कार्रवाई नहीं थी, और किसी नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। और जहां तक आपने वो जो सवाल आखिर में पूछा कि ये जो जवाबी हुआ है, पाकिस्तान एक तरफ तो रो रहा है, दूसरी तरफ उसने जिस तरह से 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की है, अलग बात है कि हमारे जो इंटेलिजेंस सूत्र हैं, हमारे जो तकनीकी इंटेलिजेंस है, उन्होंने पकड़ लिया, और हाँ, और पाकिस्तान कोई नई बात नहीं, अगर आप याद कीजिए कि 1971 की लड़ाई में है या 1965 की लड़ाई में, अगर मोर्चे से अलावा और शहरों पर भी बमबारी करता रहा, मुझे लगता है कि भारत इन सब चीजों से सबक ले चुका है। और ये जो कार्रवाई आज हुई है सुबह सुबह, जिसकी जानकारी आज व्योमिका सिंह और सफिया कुरैशी ने दी, मुझे लगता है उस संदर्भ में लिया जाना चाहिए।
और अब हमारे साथ पूर्व एम्बेसडर प्रभु दयाल जुड़ गए हैं। एम्बेसडर दयाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया।
जी एम्बेसडर दयाल, हम आपसे जानना चाहेंगे अभी जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या आपको लगता है अभी कैसे आप आंकते हैं अभी की स्थिति को?
देखिए, भारत ने जो अब तक कार्रवाई की है वो इस बात को मद्देनजर रखते की है कि हम जो है रिटेलिएशन ही कर रहे हैं पहलगाम टेरर अटैक के संबंध में। हम नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो, लेकिन हमने ये भी साफ जाहिर कर दिया है कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। उस एस्केलेशन की हम जवाबी कार्रवाई करके पूरी तरह से पाकिस्तान को बता देंगे कि उसकी क्या हैसियत है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की नस नस में आतंकवाद घुसा हुआ है। मैं पाकिस्तान में पोस्टेड था 4 दशक पहले, 1981 से 1985 तक। मैं सुनता था बार बार उनके जनरल ये कहते थे कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts, और आज भी उनके जनरल यही कहते हैं कि किस तरह से वो भारत को नुकसान पहुंचाएं और भारत का खून बहाए। देखिए, बिलावल भुट्टो ने भी जब इस इंडस रिवर की बात चल रही थी तो उनका तो या तो उसमें पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, उनकी जो जबान में जब यही बात घुसी हुई है कि किस तरह से खून का राबा करें। अब देखिए, वो ये जानते हैं कि भारत की जो सेना है वो उनसे कहीं ज्यादा सशक्त है, कहीं ज्यादा ताकतवर है, तो वो डायरेक्ट वॉर नहीं करना चाहते, लेकिन एक कोवर्ट वॉर का उन्होंने रास्ता चुना हुआ है और उस कोवर्ट वॉर को वो टेररिस्ट के थ्रू हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो टेररिस्ट अटैक्स कराते हैं, हमेशा से कराते आ रहे हैं। तो अभी ये जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है, ये तो एक बहुत ही गंदी हरकत है। उन्होंने इसको एक धार्मिक रूप दे दिया और उन्होंने क्या किया कि लोगों से कहा कि कलमा पढ़ो और ऐसे कुछ और चीजें कहीं पहचानने के लिए कि कौन मुसलमान नहीं है, उनका कत्ल किया और उनके बीबियों से कहा कि जाके तुम मोदी जी को बताओ। तो ये बताइए कितनी घिनौनी हरकत है, और क्या ऐसे ही हम उसको नजरअंदाज कर देते? तो भारत सरकार ने जो किया है वो बहुत सही किया है कि आतंकवाद टेररिज्म के खिलाफ ये बहुत अहम कदम उठाया और 9 टेररिस्ट जो साइट थी उन पर अटैक किया। कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं अटैक किया, कोई सिविलियन साइट पे नहीं किया, लेकिन सिर्फ उन साइट्स पे किया जहां पर ये टेररिस्ट तैनात थे, ये उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड थे, ये वहां रहते थे, तो उनको अटैक।
जी बिल्कुल। और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। चोपड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जय हिंद।
चोपड़ा जी, आपसे जानना चाहेंगे जो आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल को और अब जो घटनाक्रम है जिसमें पिछले परसों रात हमने जवाबी कार्रवाई की और कल रात पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, जबकि हमने सिर्फ टेररिस्ट जो कैंप्स थे उन्हीं को टारगेट किया था और साफ कहा था कि हम मिलिट्री और सिविलियन जो भी एरियाज हैं उनको बिल्कुल हम टच नहीं करेंगे। तो कैसे देखते हैं आप इस उभरती सिचुएशन को?
देखिए, पहले तो जैसे आपने बिल्कुल साफ साफ बताया है कि हमारा एम था कंस्टर्ड रिस्पांस, मिनिमम रिस्पांस जिसमें कोई कोलेटरल डैमेज ना हो। तभी अगर आप देखें तो टाइम जो हमने चुना था वो रात के 1 बजे कोई सिविलियन बाहर नहीं होता, तो बहुत डेलिब्रेट किया था कि हम ऐसा अटैक करें कि सिर्फ और सिर्फ सिर्फ उनके टेररिस्ट कैंप पे हों। और ये पहली बारी हमने एक इंटीग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशन किया था आर्मी नेवी एयरफोर्स में, और इस बारी हम 6 किलोमीटर से लेके ओवर 100 किलोमीटर्स तक हमने इनके टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया है। जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी हैं, और हमने साफ साफ बताया था ये नॉन एस्केलेटरी है, ये हम वन टाइम वाला कर रहे हैं को आपको बताने के लिए कि आप हमेशा डिनायल मोड में रहते हैं कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है, और साथ ही आप ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमने उन जिहादी जो कि स्पॉन्सर्ड बाय आर्मी हैं उनके कैंप्स पे डिस्ट्रॉय किया है, जैसे कि आपने देखा, और ये पहली बार ही हुआ है कि लाइव इमेजेस, रियल टाइम इमेजेस कहते हैं, वो देश को दिखाई गई हैं, जिसको पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में और भारतवासियों को विश्वास है अपनी सशस्त्र सेनाओं पे और साथ साथ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप पे। और हमने उनको बार बार बोला था ये वन टाइम अटैक है, आप इस पर आगे कोई कार्रवाई ना करें और मसला यहीं हसल हो जाएगा। पर जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है, उनकी इकॉनमी बहुत बुरी है, वहाँ आप चाहे देखें खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ तारीख़े टीटीपी वहाँ काफ़ी उग्रवादी हमले कर रहे हैं, आपने अभी ये भी सुना होगा लास्ट 24 घंटों में बीएलएम में बलूचिस्तान ने आर्मी के कन्वॉयस पे काफ़ी अटैक किया है जो कि घातक रहा है। साथ ही आपने देखा सिंध में भी काफ़ी दंगे चल रहे हैं पानी को लेके, इंडस वैली शेयरिंग वाटर पे, पीओके में भी दंगे चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात पहली बारी है जो पंजाब में है, पंजाब जहाँ से मेन आर्मी आती है वहाँ भी इंटरनल टर्मोइल है, ये लेके क्योंकि वहाँ जो मोस्ट पॉपुलर लीडर थे इमरान खान जो क्रिकेटर थे पुराने, तब से ही वो एक आइडियल हैं लॉट ऑफ यूथ के पाकिस्तान में, उनको हटा के जेल में डाल दिया गया है और उन्होंने एक पपेट गवर्नमेंट ले आए हैं जिससे कि ना केवल मासेस आर्मी के अगेंस्ट हो गए हैं, इवन आर्मी में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। एक तो जो मैंने बताया बलूची, खैबर पख्तूनख्वाल, पीओके, सिंधी, वो फील करते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हमारे को टारगेट किया जा रहा है, और साथ ही जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस, प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस वाले ऑफिसर्स हैं जो इमरान खान के साथ हैं और कुछ असीम मुनीर के साथ हैं, तो इनमें डिवाइड है। इस वक्त पाकिस्तान चाहता था कि एक फेस सेविंग फार्मूला निकाला जाए जिससे कि पाकिस्तान की आर्मी की इमेज ऊपर हो और देश उनके साथ आ जाए। तो उसका एक ही मुद्दा होता है पाकिस्तान में हमेशा कि कश्मीर इशू लाया जाए, हिंदुस्तान का इशू लाया जाए, तो उस इशू को देख के उन्होंने टेररिस्ट अटैक किए। और
अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर में उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों ने जिस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों को नष्ट किया है वह देश के लिए गर्व की बात है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के सशस्त्र बलों को साहस और वीरता के साथ कार्रवाई करने के लिए बधाई दी।
पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नष्ट नाबूद किया है वो हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए।
लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये हमला हुआ इतना सटीक 26 मिनट में इसको अंजाम दिया गया और जैसा अभी हमने पढ़ा कि बहुत ही हाईटेक था, कैसे आप आंकते हैं सशस्त्र बलों की इस प्रदर्शन को?
पहली बात तो ये ऑपरेशन बहुत सराहनीय था क्योंकि बहुत बढ़िया डिटेल प्लानिंग जो कि 14 दिन इन्होंने करी है, प्रिसीजन अटैक्स, प्रिसीजन टाइमिंग और जिसको कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक और बिना किसी कोलेट्रल डैमेज के, ये ना ओनली इंडियन आर्मी सराहना करेगी, इसको पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में इसकी सराहना होगी। और दूसरी बात, हमने LOC या LC क्रॉस नहीं की, ये सारे हमने एयरक्राफ्ट या जो लॉयटरिंग एमुनिशन जो ड्रोन्स होते हैं उसको अपनी तरफ से ही फायर किया है और एग्जैक्ट प्रोसीजन स्ट्राइक्स की थी जो कि हमने 9 आइडेंटिफाइड कैंप्स हैं, 21 कैंप्स टोटल हैं, उसमें से हमने 9 को टारगेट किया है। तो इसमें पहली बार हमने इतनी हाई टेक वेपन्स यूज किए हैं जिसमें मिसाइल्स हैं, लॉयटरिंग एमुनिशन है और ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से जिनकी मार बहुत दूर तक है, हालांकि वेपन्स इन्होंने बताया नहीं है, ये एक सीक्रेट बात है क्योंकि हमारे पास बहुत तरह के वेपन्स हैं। वेपन्स का चुनाव आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर था, पर कहने की बात यह है पहली बारी एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन हुआ है, जॉइंट ऑपरेशन, जहां नेवी अरेबियन सी में लगी हुई थी, एक्सरसाइज कर रही थी, और इंडियन एयरफोर्स भी वो एक्सरसाइज कर रही थी राजस्थान में, और साथ ही इंडियन आर्मी तो बॉर्डर्स पे लगी हुई थी, साथ ही साथ वहाँ फायरिंग भी चल रही थी, स्मॉल आर्म्स और आर्टी शेलिंग भी चल रही थी, पाकिस्तान सिविलियंस को भी मार रहा था। तो इसको देखते हुए हमने एक बहुत समय, सही समय चुना और एक हमने सिविल डिफेंस स्कीम भी उस टाइम ऑर्डर कर दी थी कि आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इस गार में जैसे मैंने बताया 14 दिन में पाकिस्तान घबरा गया था और उसकी जो निगरानी थी जिसको हम कहते हैं 24/7 365 डे एक आर्मी अलर्ट नहीं रह सकती है, ये जितने रडार्स वगैरह होते हैं इनको इक्विपमेंट फटीक भी होती जाती है, ख़राब भी हो जाते हैं, इसमें बहुत हमें रिडंडेंसी चाहिए, FOL की बहुत ज़रूरत होती है, और दूसरा जो मैन बिहाइंड द गन होता है उसको भी रेस्ट रिकूप चाहिए होता है। तो थक गया था और हमने सही समय का चुनाव करके प्रिसीजन स्ट्राइक किया है जिसमें हमारी कोई जान मान हानि नहीं हुई, कोई इक्विपमेंट डैमेज नहीं हुआ और पाकिस्तान को प्रिसीजन स्ट्राइक दी थी और पूरी हमने रियल टाइम इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड को दिखाई है। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया में या टीवी में देख रहे हैं कि टेररिस्ट जो हैं उनके जो जनाजे के लिए हैं सब जगह पे पाकिस्तानी जर्नल्स, पाकिस्तानी सोल्जर्स आ रहे हैं और उनके जो जो कॉफिन्स हैं उनको उनके पाकिस्तान फ्लैग में लगाया जा रहा है। बहुत सबूत है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है जो टेररिस्ट स्पॉन्सर करता है और ये इनके पास एक हथियार ऐसा है जिसके पूरे वर्ल्ड में इसने करा हुआ है, आतंक फैलाया हुआ है। तो ये समय आ गया है कि इन आतंकवादियों का विनाश किया जाए।
इनफैक्ट इसका एक और भी पहलू है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन को बहुत टाइम से यूएन और पूरे अपने देश में भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। देखते हैं कि विक्रम मिश्री जी ने इसके बारे में क्या कहा।
देखिए मिस इन्फॉर्मेशन तो इसे पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है 47 से ये तब से बताया जा रहा है कि ये गलत हैं। पहले इन्होंने अपने रेडर्स जो भेजे थे इन्होंने बोला ये हम तो हैं ही नहीं, जब यूएन फोर्सेस आई तो देखा है तो पाकिस्तानी है। उसके बाद इन्होंने 65 में मुजाहिदीन भेजे, उसमें भी उन्होंने नाकार कर दिया कि ये तो, और अभी टेररिज्म में भी ये कह रहे हैं तो होम ग्रोन टेररिज्म है, ये तो हिंदुस्तान के जो है वो आज़ादी मांग रहे हैं कश्मीरी, वो अंदर से होम ग्रोन टेररिज्म है। और अभी भी जो हमने ये जॉइंट कह रहे हैं कि भाई हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें, इनका ये हमेशा से फसाड़ रहा है। अगर आप देखिए 26/11 में पठानकोट उरी अटैक के बाद हमने इनको काफ़ी मौके दिए पर वो फाइलों पे फाइलें मूव होती हैं, जॉइंट डेटा दिखाया जाता है, इनका इंस्पेक्शन भी कराया था पठानकोट में, पर ये टाल मटोल करते रहते हैं और हमेशा जैसे इनकी आदत है झूठ बोलने की, डिनायल मोड में रहने की, जो कि आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी बताया है
जी बिल्कुल। इनफैक्ट जो फॉरेन सेक्रेटरी जी ने कहा अपनी ब्रीफिंग में इस संदर्भ में, आइए सुनते हैं।
पाकिस्तान हैज ऑल्सो फॉर डेकेड्स परसूड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन टू इंडिया विद इम्प्यूनिटी एंड इन एज आई सेड येस्टरडे ऑल्सो इन ऑर्डर टू डिलिबरेटली मिसलीड द इंटरनेशनल कम्युनिटी दे क्लेम दैट द टेररिस्ट साजिद मीर वॉज डेड दे केम अंडर प्रेशर एंड साजिद मीर वॉज देन ब्रॉट बैक टू लाइफ अरेस्टेड एंड इज नाउ अपेरेंटली इन पाकिस्तानी कस्टडी।
एम्बेसडर दयाल आप क्या कहेंगे, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन का जो एक वेपन यूज कर रहा है पाकिस्तान ये कितना यू नो हार्मफुल है और इसको वो करने के लिए निष्क्रिय करने के लिए हम क्या कर रहे हैं।
देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में पाकिस्तान ने एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया है उसको दुनिया ने नाकार कर दिया है। देखिए पाकिस्तान क्या कह रहा है कि जो उसने भारत के खिलाफ कार्रवाई की वो बड़ी कामयाब हुई, उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी हमने हर चीजें की हैं जो कि बहुत कामयाब हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक इंडियन रफाइल को गिरा दिया बहावलपुर के पास, लेकिन जो उसकी तस्वीरें दिखाई वो तो कहीं से रफाइल के नहीं थी, वो एक पुराना क्रैश हुआ था 2021 में MiG-21 का, जो मोगा में हुआ था यहाँ पंजाब में, उसकी तस्वीर थी। और उसको उन्होंने ऐसा पेश किया कि जैसे ये हमने रफाइल गिराया भारत का। इसके अलावा देखिए, एक वीडियो सर्कुलेट हुआ है जिसमें ये दिखाया गया है कि भारतीय सेना अपने एक सफेद झंडे के साथ सरेंडर कर रही है पाकिस्तानियों को। ये बिल्कुल ही झूठी नैरेटिव है, लेकिन पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं फॉर इंफॉर्मेशन अताउल्ला तरार, उन्होंने इस बात का पूरी तरह से समर्थन किया कि नहीं, ये क्लेम बिल्कुल सही है। लेकिन जब बात सामने आई तो ये स्पष्ट हो गया कि ऐसी कोई हरकत, ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, और ये पाकिस्तानी जो ये झूठ फैला रहे हैं ये सिर्फ एक दुनिया को भ्रम में रखने की कोशिश है। इसके अलावा देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जो बहुत सीनियर मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने कैप्चर कर लिया मिलिट्री स्ट्राइक्स पे। लेकिन ये बात बिल्कुल प्रूव कर दी गई कि ये गलत है, तो उन्होंने अपना जो ये बयान था वापस ले लिया। मतलब आप सोचिए कि पहले तो झूठ बोला, फिर जब उनका झूठ चला नहीं तो उन्होंने उसको वापस ले लिया। इसी तरह से कई अन्य झूठ बातें पाकिस्तानियों ने फैलाई हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने भारत के खिलाफ ये सैनिक कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ ये बात साबित करता है कि देखिए, पाकिस्तान का नाम तो अब चेंज करके झूठिस्तान कर देना चाहिए।
आप जोड़ना चाहेंगे कुछ?
हाँ, मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि एक वॉर स्ट्रैटेजी में इंफॉर्मेशन कैंपेन भी एक वॉर स्ट्रैटेजी होता है। इंफॉर्मेशन कैंपेन कह लिए, या आप उसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह लीजिए, या उसको आप नैरेटिव्स कह लिए, या उसको आप किसी भी ढंग से बोलें, तो झूठ फैलाना कि लोगों में अपनी उनकी फोर्सेस का मोराल डाउन करना, पब्लिक का मोराल डाउन करना, ये एक फौजी टूल है जो सब नेशन करते हैं। और मेरे को सारे श्रोताओं से ये निवेदन है कि सिर्फ जो गवर्नमेंट साइट है, ऑथराइज साइट है, उससे ही जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसी को बिलीव करें। तभी आप देख रहे हैं, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम सच का सच, झूठ का झूठ बताते हैं, और हम कोई इन्फॉर्मेशन छुपाते नहीं है अपनी पब्लिक से, क्योंकि हम सच के मार्ग पे चल रहे हैं और हमें यकीन है हमारी आर्म फोर्सेस पे और पॉलिटिकल लीडरशिप पे कि हम जंग में जीत ही करेंगे। और अगर इन्होंने आगे एस्केलेशन किया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे।
और सोशल मीडिया पे विश्वास नहीं होना चाहिए, जो ऑफिशियल ब्रीफिंग्स आती हैं उसी से हमें सच्चाई का पता लगता है।
बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात विक्रम मिश्री जी ने कहा कि पाकिस्तान की बुनियाद ही झूठ पर है, और जो 1948 के कबायली हमले थे कश्मीर इलाके में पाकिस्तानी सेना द्वारा, उसका जिक्र किया, या यूनाइटेड नेशन में जो कहा उसका जिक्र किया। तो पाकिस्तान तो करता ही रहता है, लेकिन एक चीज़ ये भी हम लोगों को देखने की है कि जिस तरह से उसने, भले अपनी ओर से वो बता रहा है बार बार कि सिविलियन साइट्स पर या मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पर या उसके साइट्स पर हमला हुआ है, लेकिन उसने खुद भारत को टारगेट किया। जो 15 शहरों में वो मिलिट्री आउटफिट्स के जो इंस्टीट्यूशंस थे, साइट्स थे, उनके लिए वो टारगेट किया। और ये भारतीय सेना, ये जानने की ज़्यादा मेरी दिलचस्पी इसमें है, और शायद हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे, हमारे साथ राजीव जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, किस तरह से उसको नेस्तनाबूद किया पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को। तो ये बड़ी,
पहले मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ
जी।
अगर आप देखिए, उसामा बिन लादेन वो वहीं रह रहा था, उन्होंने हमें, हमारे साथ क्या पाकिस्तान के साथ भी झूठ बोला, वो वहीं निकला
अमेरिका के साथ,
अमेरिका के साथ भी झूठ बोला। और अभी आप देखिए, वो तो कहता है हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है,
बिल्कुल,
और वो कहता है भाई हम तो खुद ही पीड़ित हैं आतंकवादियों से। तो ये तो इनकी जो जिहादी वेपन है, इनके झूठ तो बुनियाद में है और झूठ बोलते रहेंगे। आप में से क्या पूछना चाह रहे हैं?
मैं ये पूछ रहा था कि जो आज भारत के 15 शहरों को निशाना बनाना चाहते थे पाकिस्तानी सेना के जवान या पाकिस्तानी सेना के, जो उसको किस तरह से हमारी सेनाओं ने नेस्तनाबूद किया और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को एकदम से पंगु बना दिया, ये बड़ी हमारी कामयाबी है, लेकिन ये कैसे हुआ होगा और किस तरह से होता है जरा ये
देखिए। हमें पूरा यकीन था क्योंकि अपना नाक बचाने के लिए आसिम मुनीर जी काउंटर स्ट्राइक तो करेंगे ही करेंगे, रिटेलिएट तो करेंगे ही करेंगे, तो हमारी सेना बिल्कुल तैयार थी, रेड अलर्ट पे थी 24/7, कोई उन्होंने हमें कमी नहीं की और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कर रहेंगे। और जैसे कि जैसे जो बैटल इंडिकेटर्स होते हैं, लेट बैटल इंडिकेटर्स जिसको हम कहते हैं, उसमें सबसे पहले एयर को सप्रेस किया जाता है, एयर डिफेंस सिस्टम को सप्रेस किया जाता है। तो पाकिस्तान ने वही कोशिश की थी। अगर आप देखिए जहाँ जहाँ हमारे एयरफील्ड्स हैं, जहाँ जहाँ हमारी कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, जहाँ जहाँ हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उनको उन्होंने टारगेट किया क्योंकि वो चाहते थे कि हम इनके एयरक्राफ्ट को और एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दें। पर हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम में हमने पूरा कवरेज था हमारा रडार्स के थ्रू और यूएवी कवरेज भी था, कई हमारे पास सर्वेलेंस सिस्टम है, सबसे इंपॉर्टेंट आजकल के वॉरफेयर में जिसको कहते हैं हम आईएसआर सिस्टम, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनिसेंस सिस्टम, जिसमें रडार्स भी आती है, एयर सर्वेलेंस भी आती है और कई तरह के सर्वेलेंस सिस्टम में सैटेलाइट भी आते हैं, वो आते हैं, हमारा पूरा कवरेज था। और साथ ही साथ जब ये रडार्स की कैपेबिलिटी होती है कि ये टारगेट को ट्रैक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद गन्स या मिसाइल्स को या एयरक्राफ्ट को बताते हैं जिससे हम स्ट्राइक करते हैं। आपने आज देखा होगा सारे चैनल्स में आ रहा है कि हमारे पास S-400 सिस्टम है जो कि हमने रशिया से लिए हुए हैं, ये वर्ल्ड के नंबर वन माना जाता है। और इसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज सब टारगेट्स ले सकते हैं। पहले ट्रैक करेगा, उसके बाद वो काउंटर मिसाइल फायर करेगा। तो जब ये जहाँ भी ये थे टारगेट्स और इनको हमने वहीं एयर में यूटिलाइज कर दिया, इनको टेक ऑफ करने के बाद ही। और कुछ आपने देखा है, कोई भी फूल प्रूफ सिस्टम नहीं होता है, तो कुछ इसमें मिसाइल्स और बॉम्ब्स गिरे हुए हैं जिनके क्रिएटर्स आज टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन दिखाई जाएगी, उसमें आप पक्का देखिएगा पाकिस्तान या चाइनीज मार्क मिलेंगे, वो भी पब्लिक को दिखाया जाएगा। अब नाउ, क्योंकि हमने बताया था जिस डोमेन में और जिस इंटेंसिटी से आप अटैक करेंगे, उसी डोमेन और इंटेंसिटी से हम अटैक करेंगे। हमने उसी डोमेन में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को सप्रेस करा,
हालांकि हम चाहते नहीं थे कि एस्केलेट हो।
हमने तो बोला कि वन टाइम था हमारा, अगर आप हमारी,
वो भी आतंकवाद के खिलाफ था,
आतंकवाद के खिलाफ था, आपके खिलाफ तो है नहीं, आप तो कह रहे हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो हमने आज काउंटर स्ट्राइक्स किए हैं ड्रोन से और मिसाइल से, जो उनके हमने सिस्टम्स हैं, आप कहते हैं लाहौर के पूरी बैटरी बर्बाद हो गई है, वहाँ मिसाइल सिस्टम और जो भी आ रहा है हेडक्वार्टर 9 मिसाइल बैटरी खत्म हो गई है। और रावलपिंडी में भी आपने देखा स्टेडियम में जो विजुअल्स दिखा रहे हैं, वहाँ भी इन्होंने अटैक किया। आपको मालूम है रावलपिंडी में इनका आर्मी हेडक्वार्टर है, वहाँ भी किया है, सियालकोट में भी किए हैं, कई जगह के अभी विजुअल्स पूरे नहीं आ रहे हैं, पर हमने काफ़ी जगहों पे इनके एयर मिसाइल सिस्टम्स या एडी सिस्टम बर्बाद कर दिए हैं, उससे ये बिल्कुल अब अंधे हो गए हैं और उससे हमारे एयर को और फ्यूचर ऑपरेशंस में बहुत बहुत सहूलियत मिलेगी अगर ये एस्केलेट करेंगे। अभी भी पाकिस्तान को मान के जाना चाहिए और अपना उन्होंने जो कर लिया है वो कर लिया है, इसके बाद उनको डी एस्केलेट करना चाहिए, नहीं तो उनके आगे की जैसे इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ अ बिगनिंग टू एन एंड ऑफ टेररिज्म एंड द पावर ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। वैसे ही मैं बताना चाहता हूँ, जैसे इनकी इकोनॉमी है और जैसे इनकी इक्विपमेंट है और जैसे इनका असला है, इनके पास एमुनिशन, इनके पास जो वॉर एंड्योरेंस है, योर वॉर एंड्योरेंस 4 से 5 दिन की है। अगर इंडियन आर्मी और बड़ी नो इस वक्त 4th लार्जेस्ट वर्ल्ड इकॉनमी है और हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स इनसे 100% ज़्यादा है, तो इनका विनाश ही होगा अगर ये अभी माने नहीं तो।
इनफैक्ट विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले ने भारत को सीमा पार आतंकवादी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विवश किया था। उन्होंने कहा कि भारत की प्रतिक्रिया लक्षित तथा नपी तुली थी और हमारा इरादा स्थिति को बिगाड़ने का नहीं था। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यदि भारत पर कोई सैन्य हमला होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बहुत ही सख्ती के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर सईद अब्बास अरागची के साथ भारत ईरान 20वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। एम्बेसडर दयाल, आप क्या कहेंगे? ये जो बोला डॉक्टर जयशंकर ने कि अगर वहां से सैन्य हमला होता है तो उसका जवाब हमें फिर जरूर देना होगा, लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं थे, हम आतंकवाद के खिलाफ है हमारी लड़ाई, क्या लगता है? आज आपको ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई पूरे राजनीतिक दलों की भारत में, और उसमें भी सबने जो है अपना समर्थन जताया और पूरा देश भी एकजुट है इस आतंकवाद की लड़ाई के खिलाफ, सारे 140 करोड़ भारतीय। ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये जो सॉलिडारिटी है पूरे देश की?
देखिए, आपने दो प्रश्न पूछे हैं, मैं दोनों को एक एक करके जवाब दूंगा। पहली तो बात यह है कि जो भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पे कोशिश की है वो बहुत अच्छी है। पहली बात तो हमने ये स्पष्ट की है कि जो हमने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में कार्रवाई की है ये नॉन एस्केलेटरी मेजर्स हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान रिटालिएट करता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं। और ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो अब टेंशन को एस्केलेट करना चाहता है नहीं, अब वो करेगा तो हम भी उसको पूरी तरह से जवाब देंगे। दूसरी बात, जो ये ऑल पार्टी मीटिंग हुई ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। इससे सब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सरकार के समर्थन में आ गए। देखिए, जो ऑपोजिशन में भी हैं उन्होंने भी न सिर्फ सेना की पूरी तरह से सराहना की बल्कि साथ साथ ये भी कहा कि वो सरकार के जो उठाए हुए कदमों के पूरी तरह से वो उसके समर्थन में है और वो कह रही हैं कि ये जो कदम है ये भारत के हित में। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को हम यूनाइटेड होता देख रहे हैं और हम ये इस बात से यकीन कर सकते हैं कि एक यूनाइटेड इंडिया बेटर पोजीशन में होगा पाकिस्तान के जवाब में कार्रवाई करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है इस तरह की पॉलिटिकल यूनिटी को जाहिर करना।
आपके पास 20 सेकंड में आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये बताना चाहूंगा, पहले तो एक तो होल ऑफ नेशन अप्रोच है इस बारी
जी
और इंटीग्रेटेड सर्विस अप्रोच है। और लेट मी टेल यू, जो इंडियन आर्मी का मोराल है इस वक्त और हमारी पॉलिटिकल लीडर की जो डायरेक्शंस हैं, हम किसी भी आपदा का सामना करने को तैयार हैं और हम जैसे हमें बताया चुन चुन के मारेंगे और उनको मिट्टी में मिला देंगे। मेरे को फक्र है अपनी इंडियन आर्मी पे कि और पूरी डिफेंस सर्विसेज पे कि इन्होंने कितना बढ़िया प्रेज़वर्दी काम किया है। धन्यवाद और जय हिंद।
एम्बेसडर दयाल, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा और उमेश चतुर्वेदी जी, आप शामिल हुए इस विशेष चर्चा में और अपने विभिन्न पहलुओं पर हमें बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक प्रतिक्रिया पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभु दयाल और रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में